दूध चला है अंडे की जगदंडे। यह है मम्मा के लिए भक्तों की नन्ना। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले, अब यह तो भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की नन्ना तो बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा खुद आते हैं तब आकर जगदम्बा को रखते हैं। रखने वाला कौन? रचयिता क्रिएटर हुआ सूर्य। और सबसे पहले रचना किसकी रची? जगदम्बा की। जगदम्बा को रचते हैं। मानस शिव जयंती के बाद कौन सी जयंती होती है? गीता जयंती। तो गीता हुई सर्व का माई बात। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काली को गोरा बनाते हैं, उस समय जगदम्बा पे होती है। जैसे सोलर का चित्र पे होती है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रखे, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। हम एक प्रकार से मेहनत भी करते हैं, परंतु परमात्मा है एक ही। वैसे जगदम्बा भी एक ही है। दो भुजा वाली है। आठ से भुजा वाली कोई देवी होती नहीं है। प्रजा पिता अथवा जगत पिता भी दो भुजा वाले हैं। जगदम्बा की महिमा जाति कलपत्र में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया। चित्र बनाने वाले भक्त भयानक चित्र बनाया है। छप्पर की माला भी पहनती है। छप्पर में कपाल ये सब भक्ति मार। जगदम्बा पर बलि नहीं ले सकती। वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती? अथवा वह मलेच्छ मांसाहारी कैसे हो सकती है? सकते नहीं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है, ना दोनों को कोई बैठ समझा दे। तो जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, और ना ऐसी बलि लेती है। कैसी बलि? जैसे स्थूल बलि दिखाई है तो सर काट लिया और खत्तर अर्थात मुंड माल धारण कर लिया, उसने भी एक और वैष्णव देवी और दूसरी है मांसाहारी। अगर जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती है, भले मम्मा कुमारी है, शायद कुछ भी न खाया हो, जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है? जरूर वो कुमारी ओम राधे शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसके थ्रू जगदम्बा का पार्ट बजाती है प्रवृत्ति मार्ग का। ब्रह्मा के साथ है सरस्वती की प्रवृत्ति की बात नहीं है, सरस्वती तो उनकी बेटी थी। ब्रह्मा सरस्वती को प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं कहे जाएंगे, लेकिन वो ही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कन्न लुग में जिन ब्राह्मण ब्राह्मणियों में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा संसार में जगत पिता और जगदम्बा बनकर प्रत्यक्ष हो जाते। तो ये समझने की बात है, कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, नाम क्या रखा? कलकत्ता, कलय के लिए कत्ता। पूजा का आधार क्या होता है? पूजा तो प्योरिटी के आधार पर ही होती है। तो उन्हों को समझाना चाहिए, किन्हों को? कलकत्ते वालों को। तो जगदम्बा जो काली है, आओ उनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। चौरासी जन्मों की कहानी सुनाने का मतलब है कि जगदम्बा है आदि सनातन देवी देवता धर्म की शक्ति। काली के जो भक्त होंगे वो बिगल पड़ेंगे क्या? तो हमारी माँ के भी अनेक जन्म होते हैं, वो भी जन्म मरने के चक्कर में आती है क्या? क्यों बगर बिगड़ पड़ेंगे? शूटिंग फिगर से इसका क्या कनेक्शन? हाँ, ब्राह्मण की संगम की दुनिया में निश्चय और अनिश्चय के चक्र में आना ही चौरासी के चक्र में आना है, जन्म और मृत्यु के चक्र में आना है। वास्तव में जन्म और मृत्यु का चक्कर तो दो का नहीं है, एक शिव का नहीं है और दूसरा शंकर का नहीं है। संगम की दुनिया की भी बात है, एक सुप्रीम सोल और दूसरा मनुष्य आत्माओं में जो पावरफुल आत्मा है प्रगटता है, जिसके थ्रू तो बाबा प्रत्यक्ष होते हैं, संसार में चित्र बनाए जाते हैं नग्न मूर्ति के रूप में। तो ये दो रूप हैं जो जन्म मरण से न्यारे बताए गए, इसीलिए भक्ति मार्ग में सिर्फ शंकर को मिला के एक कर दिया, क्योंकि दोनों में एक तरह की शिष्ट है। कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं, तो स्कूल में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। 5000 वर्ष इस धरती पर आता ही नहीं। और दूसरा शंकर, शंकर को तो इस धरती पर ही दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हुए भी स्टेज ऐसी है कि निश्चय अनिश्चय के चक्र से गुजरने वाली आत्मा नहीं है। बड़ा निश्चय बुद्धि, अटल निश्चय बुद्धि, शंकर के भक्तों को ये कहा गया कि शंकर जन्म मरण के चक्र में आता है, तो भक्त लोग बिगड़ पड़े फिर तो ठीक बात। क्योंकि शंकर को तो शास्त्र में भी नहीं दिखाते हैं कि जन्म मरण के चक्र में आता है, उसको तो अकाल मूर्त कहते हैं। उसकी मूर्ति को कोई काल खा न सके, अमरनाथ कहते हैं। फिर काली के भक्त क्यों बिगड़ पड़ते हैं? वो कहेंगे वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। माना जिसकी जिसके ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है, उस श्रद्धा को वो पूरा भगवान के रूप में देखना चाहते, लेकिन जन्म मरण के चक्र में तो सब आते हैं। उस परमात्मा पार्टी को छोड़कर ऐसी ऐसी जो भयानक शकल बनाई है वो जगदम्बा की तो हो न सके, लेकिन चित्र बनाया है तो चरित्र तो होगा ना कोई, बिना चरित्र के तो चित्र बनता नहीं। तो जरूर जिन्होंने ये भयानक शकल बनाई है उन्होंने उस भयानकता का अनुभव किया है संगम युग में विकराल रूप का। वो असुर हैं जो मार के रूप को भी भयानक रूप में देखने के आदि हो गए, नहीं तो माता का तो मृदुल रूप होता है। ऐसी भयानक शकल जो बनाई है ऐसी होती नहीं है। लेकिन आखिरी संस्कार वालों के प्रति का रूप धारण करना पड़ता है उनको छुटकाने लाने के लिए, क्योंकि कल्याणकारी ही पूजी जाती है। ऐसा भयानक स्वरूप उनके लिए धारण न किया जाए तो उन आसुरों का कल्याण नहीं हो सकता। वो ब्रह्मा के प्यार से सुधरने वाले नहीं है। तो कल्याणकारी पूजी जाती है, मांसाहारी थोड़े ही पूजी जाती है। मांसाहारी माने भिखारी, मन बुद्धि से मांस अर्थात देह अभिमान का ग्रहण करने वाले, जगदम्बा से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। वो सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है। सच्ची सच्ची शब्द क्यों लगाया? और वास्तव में वैष्णो देवी किसी और को मानते हैं? एक तरफ कह दिया वैष्णो देवी के दो रूप हैं, तो वैष्णो देवी और दूसरी है मांसाहारी। दूसरी तरफ बता दिया कि वो सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है। तो वास्तव में कोई कुछ और भी समझते हैं क्या? वैष्णो देवी किसी और को भी माना जाता है क्या? जो वास्तव में सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है नहीं, लेकिन लकब मिल जाता है। जैसे नाम पड़ता है सत्यनारायण, लेकिन बाद में प्रकृतता होती है तो नारायण बनने वाली आत्मा वही सत्यनारायण होगी। लेकिन बाद में जैसे पुरुषार्थ की दौड़ पूरी होने पर होती है तो पता चलता है, कोई प्लस में भी आ जाता है। तो ऐसे ही वैष्णो देवी कहें या विष्णु देवता कहें, उसमें दो आत्माएं हैं मुख्य, एक ब्रह्मा फिर विष्णु। लेकिन ब्रह्मा को पुरुषोत्तम और ब्रह्मा जो विष्णु रूप धारण करता है, विष्णु के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है या वैष्णो देवी के रूप में, उनके पीछे भी कोई पुरुषार्थ कराने वाली शक्ति और होती है। यज्ञ के आदि में भी वो शक्ति थी और अंत में भी वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है। पर जो शक्ति शक्ति वैष्णो देवी है उसके पिछले जन्म में जरूर मूर्त कली की मान्यता आ रही थी। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को ढिल कर आती थी, टीचर बन करके बैठती थी, सब फिर जाति दुर्गति में चली गई। तो फिर जन्म की बात बताई तो पिछले जन्म में मूत पली की मांसाहारी थी। फिर वैष्णव अथवा पावन रह गुण वाली बन रही है ये सारी संगम की बात। अनेक भुजाएं दिखाना, भयानक रूप दिखाना, मांसाहारी दिखा देना और संपत्ति में खास विशेष पूजा दिखाना, ये सब चरित्र यादगार कहाँ के हैं? संग मूर्ति पास्ट के यादगार हैं, जो प्रैक्टिकल पास्ट चला है। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर मेहनत करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्मा का बाप भी एक है, पर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। आत्माओं का बाप वो भी देहद का बाप है, और मनुष्यों का बाप वो भी देहद का बाप है। वो है निराकार बिंदु और वो है साकार प्रजापिता। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है, वो सब बलि आदि नहीं देती है। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। कौन सुंदर बनेगी? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब सारा परिवार सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं। हनुमानों से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते। जब तो कॉलेज स्टूडेंट्स जब बिगड़ते हैं तो गाड़ी तथा स्कूलों को भी आग लगा देते हैं। तो समझाने में होशियार होना चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जब कलकत्ते में गई थी कौन सी मम्मा? कौन राधे? जगदम्बा है एक और तुम अनेकानेक बच्चियां, तो नाम तो एक का होगा ना। एक से ही अनेक मंदिर बनाए, हाँ एक ही देवी और मंदिर अनेक हैं, मूर्तियां अनेक प्रकार की बनाई दी, नौ देवियां बनाई दी। उसका रहस्य क्या हुआ? एक ही शक्ति है जो अलग अलग प्रकार के साकार आधारों में प्रवेश करके अलग अलग प्रकार का पार्ट बदल। तो आप कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से कैसे छुड़ाएं? कौन सी पूजा से? देवी की पूजा से। भैया देवी की पूजा से क्यों चलाओगे? देवी की पूजा से छुड़ाने का मतलब क्या? क्यों छुड़ाया जाएगा? अवस्थी की पूजा वो है श्रेष्ठ पूजा, और जो निवृत्ति वाली पूजा है जैसे सिंगल देवता कृष्ण की पूजा, गणेश की पूजा, हनुमान की पूजा, वो देवी देवताओं की असल पूजा नहीं है। क्योंकि देवताएं होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, जब भक्त बोलते हैं नारा लगाते हैं जय माता दी, तो वो भूल जाते हैं उनके टीचर को चिता दीजिए। इसलिए कहा ये सिंगल देवी की उपासना वाली पूजा से इन भक्तों को कैसे छुड़ाएं, दोनों को भी पूजी तो बनना है ना। क्योंकि बताया देवी की पूजा करने वाले हैं आसुरी संप्रदाय, जो सिर्फ देवी की पूजा करते हैं। रावण किसकी पूजा की? देवी की पूजा की। सीता को मान दिया और राम को पहला दिया बाबो, तो सीता को अकेला कर दिया। तो ये प्रवृत्ति मार्ग को ध्वंस करने वाला है रावण। बाप तो आकर प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, तो इसलिए बोला इन भक्तों को इस पूजा से कैसे छोड़ा, दोनों को भी पूर्ति को बनाना है ना। तो बाहर जाकर कोई समझावे कहा कलकत्ते में, उस समय वह जगदम्बा सबकी कामना पूर्ण करने वाली बैठी है। उस समय बैठी है बंग मेघ में बैठी है और सभी छोड़ गई, सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई या पूर्ण होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है, हुई नहीं है, तो जरूर जगदम्बा इस समय चंद्र लोगों में बैठी होनी चाहिए। वो हर काम धन्य सबकी श्रेष्ठ मनोकामना पूरी करने वाली। शरीर की वह कामना पूर्ण करती है ये कोई जानते नहीं है क्या? अगर ये जान जाए तो वो मनोकामनाएं किस रूप से पूरी करती है, तरीका क्या है, तो गॉड फादर के साथ गॉड मदर को भी मानने लगे। लेकिन विदेशों में गॉड मदर की मान्यता नहीं है, किसको मानते हैं? गॉड फादर को मानते हैं। तो या तो सिंगल पुरुष की पूजा करते, या तो सिंगल स्त्री की पूजा करते, देवी की पूजा करते हैं, दोनों ही रंग। क्योंकि सिंगल पूजा की शुरुआत होती है समय प्रधान युग कलयुग से, विचारी बन जाते हैं स्त्री और पुरुष दोनों। दूसरा पे तुम हो काम धन और जगदम्बा की बच्चियां, कामधन किसी को खाते हैं शास्त्रों में, किसका नाम है? गाय दिखाई है जिस गाय के शरीर में सारे ही देवताओं को दिखाते हैं, और गाय का मुख बना दिया है गोल गोल कन्या का, तो कामधन जगदम्बा की तुम हो बच्चियों, और गाय की बच्चियां भी क्या होंगी, गैया ही होंगी। गाय की विशेषता क्या होती है? भारत वर्ष में गाय की बहुत पूजा होती है। कृष्ण के साथ गऊ दिखाई, गऊ चराते थे, तो जानवर गणों की बात नहीं है, ये तो ह्यूमन गणों की बात है। गौ माना बहुत सीधा साधा जानवर, तो परम पंच नहीं। तो जगदम्बा की ये बच्चियां हैं, सिर्फ गौ माता नहीं है, बैल भी है, वो भी बहुतों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहाँ कहाँ भाई भी संकट चलाते हैं, उन्हें की बुद्धि में आता है कि हम भी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, अर्थात जीवन मुक्ति का रास्ता बता दो, चरस का वर्षा दें। जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा अब दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बैल कौन हुआ और गाय कौन हुई जो बहुतों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गाय हुई काम धेनु जगदम्बा और बैल हुआ है जगत पिता। उन्होंने बाकी मार्ग में गौओं के साथ सपने दिखाई दिए। बात करने कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण ने कोई गौओं को नींद कराया, न गोपियों को भगाया, न मक्खन चुराया, इसलिए मुरली में बोला हुआ वास्तव में है ये सब प्रजापिता की कहानी। बाप को गुम कर दिया और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वैष्णव देवी का मंदिर किधर है, पश्चिम में या पूरब में? वैष्णव देवी का मंदिर है पश्चिम में, पश्चिम भारत में, उत्तर साइड में, उधर अमरनाथ है। और महाकाली का मंदिर किधर है, कलकत्ते में, काली कलकत्ते वाली प्रसिद्ध है। बताया कि ऐसे नहीं है कि वहां से काली कलकत्ते वाली को ही मानने वाले हैं। जब नवदुर्गा पूजन होता है तो सभी देवियों की पूजा होती है, कोई किसी देवी को विशेष मानता है, कोई किसी देवी को विशेष मानता है। तो जो वैष्णव देवी को मानने वाले होंगे वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। परम प्रधान बुद्धि नहीं होंगे वो, क्योंकि वैष्णव देवी है पवित्र मार्ग की देवी, और बाकी देवी है महाकाली आदि, उनको पवित्र मार्ग वाला नहीं दिखाया। महाकाली तो शंकर के ही अपने गर्दन के ही छाती से पांव रखती हुई दिखाई गई है। तो निवृत्ति मार्ग वाली हुई या प्रवृत्ति मार्ग वाली, तो निवृत्ति मार्ग वाली होगी। तो तुम्हारी बातों को कौन मानेंगे, महाकाली के भक्त मानेंगे ज्यादा या वैष्णो देवी प्रवृत्ति मार्ग वाली देवी के जो भक्त होंगे वो पहले मानेंगे? वैष्णो देवी के जो भक्त होंगे कलकत्ता साइड में वो भक्त राजी हो जाएंगे। बोलो तुमको राजभाग मिला हुआ था, महाकाली के सिर्फ महाकाली के भक्तों को राजभाग नहीं मिला, तुमको राजभाग मिला हुआ था, तुमको वैष्णव देवी के भक्तों को। राजभाग मिला हुआ था लेकिन किससे, वो तो जगदम्बा है। करते तो और तुम वैष्णो देवी की पूजा, लेकिन विष्णु देवी के रूप से तुमको राजलाल नहीं मिला, मिला किसे? तो जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। और उन्हों को कहाँ से मिला? तो बाबा जी जो सारी सृष्टि कर रहे थे, तो बाबा है सारी सारी मनुष्य सृष्टि कर रहे थे, तो तुम असुरी के संग रह सकते हो। तो शिव बाबा और जगत पिता ये कोई अलग अलग पर्सनालिटी हुई क्या? पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन उनमें काम करने वाली आत्मा दो अलग अलग है। शिव बाबा की सोल अलग, सुप्रीम सोल, और जगत पिता दो अलग। विश्व पिता के हैं या विश्व पति के हैं? फिर बाबा तो विश्व का पिता या विश्व पति नहीं बनता, वो राजा ही लेता नहीं। फिर तुम अर्थी को समझा सकते हो। जगदम्बा को सभी मानते हैं, जरूर जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है फिर बाबा से। तो बाबा से पहले पहले वर्षा किससे मिलता है? जगत पिता और जगदम्बा को, जगदम्बा को शिव बाबा से वर्षा मिलता है, फिर उन द्वारा बच्चों को मिलता है। इसलिए अद्वैत वाणी ने बोला दो तीन चीज के अलावा और कोई चीज कभी सिद्ध नहीं हुई है, तो जरूर जगत पिता, जगदम्बा और वैष्णो देवी। जगदम्बा एक है और है मनुष्य, है जमीन की कोई गाय है, जानवर है, दो भुजा वाली बहुत भुजा वाली नहीं है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप भयानक दिखाई दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है, प्रधान मनुष्य ही फिर समर प्रधान बनते हैं। तो रूप भी कैसा हो जाता है? भयानक रूप हो जाता है। समर प्रधान मनुष्य फिर सत्व प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है, मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं कि जगदम्बा जगत पिता कहाँ बैठे हैं? सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, तो ये सब बातें सबके साथ है। लक्ष्मी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो कितने बड़े बड़े मंदिर होते हैं। महालक्ष्मी वो भी एक ही बात हुई, तो महिमा किसकी बड़ी है? वो है ज्ञान ज्ञानी स्वरूप। कौन? वैष्णो देवी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानी स्वरूप नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। लक्ष्मी जो बनेगी जिसका नाम लक्ष्मी पड़ेगा, सतयुग की लक्ष्मी, फिर सतयुग में देवताओं को ज्ञान की दरकार होती है? होती नहीं। वो तो पवित्रता का संगठन निकलेगा। जो पवित्र होते हैं ऑलरेडी उनको ज्ञान की दरकार है, या पवित्र से अपवित्र बनते हैं उनको ज्ञान की दरकार है? गंदा कपड़ा होता है उसी के लिए ज्ञान जल जाता चाहिए। तो ये रुद्रमाला के मन के हैं जगत पिता और जगदम्बा, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं। तो राजाओं ने तो 63 जन्मों में कितनी अपवित्रता धारण की। राजाओं ने अपवित्रता धारण की, लेकिन रानियों ने उतनी ज्यादा पवित्रता धारण की। राजाएं लड़ाई पे जाते थे तो रानियां पर्ती हो जाती थी, कोई पर पुरुष हमको हाथ न लगा सके। तो लक्ष्मी ही विजयमाला का मुख्य मर्ता और जगदम्बा हुई रुद्रमाला का मुख्य मर्ता। तो लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानी श्री नहीं कहेंगे, यानी लक्ष्मी का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में होगी वो इतनी ज्ञानी नहीं होगी। इसलिए महिमा जगदम्बा की है। मेला भी उनका बड़ा लगता है। सबसे बड़ा मेला कौन सी देवी का लगता है? अभी भी ढेर ढेर बसों की सैकड़ों बसें जाती हैं बरबर के ऑल इंडिया से। वैष्णो देवी का लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, हमेशा नहीं माना। दीपमाला किसकी यादगार है? दीप माना आत्मा रूपी दीपक और माला माना संगठन, यानी जो आत्मा रूपी दीपक जग चुके हैं अज्ञान निद्रा से, जिनका जागरण हो चुका है, इन आत्माओं की संगठन रूपी माला जब तैयार होती है दीपमाला, तब लक्ष्मी का पूजन होता है। यानी उस संगठन बनाने में लक्ष्मी का विशेष हाथ होता है, क्योंकि प्योरिटी ही यूनिटी तैयार करती है। लेकिन मेला बड़ा जगदम्बा का है। क्या था? और कोई देवी का इतना बड़ा मेला नहीं लगता, जगदम्बा का बड़ा मेला लगता है। क्यों? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में क्या फाउंडेशन, क्या कारण कि जगदम्बा ने जितना जगत पिता के साथ मिलन मेला मनाया, शिव बाबा के साथ मिलन मेला मनाया प्रैक्टिकल में, उतना और किसी ने और किसी देवी ने नहीं मनाया। इसलिए यादगार बनी बड़ा मेला जगदम्बा का लगता है। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। तो इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते हैं। कोई देवी का छोटा मेला लगता है, कोई देवी का बड़ा मेला लगता है। तो देवियां जब देवी एक ही बताएगी तो सब का एक जैसा मेला होना चाहिए, सब छोटे बड़े मेले क्यों लगते? देवी तो एक ही है जो प्रवेश करके बच्चों में प्रवेश करके पास बजाती है, लेकिन आधार तो अनेक प्रकार के हैं, पुरुषार्थ करने वाले शरीरधारी। तो जिसने जिसने जितना जितना मिलन मेला मनाया उतना उतना उनका मेला लगता। तो यह आत्मा और परमात्मा का मेला, इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। और जमीन विद्यार्थी से नाराज हो रहा है तो वो भी नाराज हो जाए, नहीं मानते तो भाग जाओ। जो कोई भी समझ जा रहे तो बरोबर ये ठीक समझाते, श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर है, लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्ष वैष्णव है। जगदम्बा भी वैष्णव है, मांसाहारी भल पहले थी, परंतु फिर बाप आकर राजो से खिलाकर मनुष्य से देवता बनाती। पहले मना कर दो, संगम युग के आदि की बात है। बनने वाले के तुम बरोबर, परंतु तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा के लायक बनते हो। क्या कहा? पूजा के लायक कब बनते हो? जब तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, बदल जाता है माना दूसरा शरीर हो जाएगा। शरीर तो यही होगा लेकिन रिजुविनेशन होगा, तब पूजा के लायक बनते। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। क्या उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं? बाद के सन्यासी लेकिन सन्यासियों में एक ऐसा भी मठ संप्रदाय है जो अपनी पूजा नहीं कराता। अब सिर्फ तो निराकार है, वो अपनी पूजा कैसे कराए? वो तो सेवादा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं, किसने आते हैं है? इसमें माने किसने?
ब्रह्मा
के तन में ना, दादा मेघराज के तन में आते हैं तो पूजा थोड़े कराते। बाप तो आकर पुजारी से पूज बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखाएंगे? पुजारी पतित को कहा जाता है। पूजा कौन करता है? पतित करता है या पावन करता है? पतित मनुष्य बहुत से पावन देवताओं की पूजा करते हैं। पावन देवता है वो जिनकी कर्मेंद्रियों पर विजय हो। तो बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप करेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है, तो जाप और याद में रात दिन का फर्क है। जाप तो सिर्फ मुख से किया जाता है और याद बुद्धि से की जाती है, तो गहरी चीज कौन सी हुई? ऊपर ऊपर की हुई ذات کی بات, اور اندرونی چیز ہے یاد. تیسرا پیج تو سائنس پر ڈھیر نئی نئی ملتی رہتی ہے. سمجھانے کے لیے یہ بھی ضروری بات ہے کہ یہ باپ بھی ہے, ان سے ملتا ہے بے حد کا ورتا, اور لکھ کے باپ سے ملتا ہے حد کا ورتا. کیا لوکی کے باپ سے حد کا ورثہ مل جائے گا, مالماریوں اور تاریوں کا ورثہ مل جائے گا, بے حد کا فرق کا ورثہ نہیں مل سکتا. سکھ دام شانتی دھم کا استھل ورثہ مل جائے گا, لیکن جو واسطوک سکھ دھام ہے شانتی دھام ہے اس کا ورثہ لوکی کے باپ سے نہیں مل سکتا, ان برہمنوں کو بھی نہیں مل سکتا. اس پار لوکک باپ کو نہ کل سے پہلے بھی ورثہ دیا تھا, اب پھر دینے آئے. بدھی نے سارا جان کرنا چاہیے جس سے منشیہ دیوتا بن جائے. گر کو جان مارگ میں سمجھانے کی بڑی محنت سے چاہیے جس سے منشیہ کی جیون ہیرے جیسی بن جائے. دکھی تو بہت ہیں, ایک دو میں لڑتے رہتے ہیں, باپ آ کر کے استری سمپردائے بنائے رہے ہیں, خود دیوی سمپردائے بنیں گے. اس لیے یہاں لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس لیے دربار میں کوئی اثر گھس نہ سکے. موت پلیسی کپڑوں کو بیٹھنے کا یہاں حکم نہیں. باپ سمجھاتے رہتے ہیں بچے کبھی بھی آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں. ستگرو کا نندا تو ٹھہر نہ پائے. یعنی ستگ میں اونچ پد نہیں پائیں گے. ستگرو جو سرف کا مالک بناتے ہیں ان کی نندا کرے تو اونچ پد پائے نہ سکے. یہ ہے ساری یہاں کی بات, اور جو نہیں ستر کی بات ہے, یہ ہے ساری سنگن بھی سرگ کی بات. پرنتو اپنے اوپر لے گئے سنیاسی گرو لوگ, اور منشیوں کو ڈراتے رہتے ہیں. تو تم نے گرو کی نندا کرائی تو تم کو کوئی تھور نہیں ملے گا. یہاں تو پورا پوتر بننا ہے. تو وہ منشی گرو ڈراتے رہتے ہیں کہ تم ہماری نندا کراؤ گے تو تم کو کوئی تھور نہیں ملے گی, مرلی بھی پڑھنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے, نکلو باہر. جو بھگت ہوتے ہیں بےچارے سے ڈر جاتے ہیں. منشی گروؤں کے جو بھکت ہوتے ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں, لیکن باپ کے جو وارثدار بچے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاس کوئی تھور ہے ہی نہیں. جو تھور ہے وہ کل اڑ جائے گا, کیونکہ سارے مندر مسجد گرجا گھر گرودوارے جتنے بھی یہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں وہ آگے چل کر کے سب ٹوٹنے لگ پڑیں گے. ایک ہی بڑا مندر رہ جائے گا. تو یہ منشی گرو تو ڈراتے رہتے ہیں, یہاں تو پورا پوتر بننا ہے. وہ گرو کر لیتے ہیں لیکن پوتر نہیں بنتے ہیں. گرہستی کو گرو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے پرجا کا پرجا پر راجی. پھر دیوی راج بنانے والا سمرتھ چاہیے. بابا آیا ہوا ہے آخری دنیا کو دیوی دنیا بنانے. کائے کے لیے آیا ہے؟ اہم آبجیکٹ ہے آنے کا. اہم آبجیکٹ کوئے پورا کیے بغیر بیچ میں نہیں واپس چلا جائے گا. دیوی دھرم کی استھاپنا ہو جائے گی, باقی سب دھرم والے خلاص ہو جائیں گے. یہ ہے باپ کے بابا کے آنے کا اہم آبجیکٹ. کیا اہم آبجیکٹ؟ سب دھرموں کو خلاص کرتا ہے اور ایک سب دھرم کی استھاپنا کرتا ہے. کہتے بھی ہیں بھگوان آ کر بھکتی کا پھل دیں گے. اس سے سدھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نروان دھام میں نہیں جا سکتا. باپ ہی آ کر راجیوگ سکھلاتے ہیں. باپ کہتے ہیں میں تمہارا پرم پتا پرماتما ہوں, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। उसमें ज्ञान होगा सारा ज्ञान, वही पतितों को पावन बना सकता है। अधूरा ज्ञान और पतितों को पावन नहीं बना सकता। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा, भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था, तो नोट जरूर करना है। परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें और पढ़ाई नहीं, ऐसे भी बहुत होते हैं, डायरियों की डायरियां लिखते चले जाते हैं पर पढ़ने का कभी नाम नहीं लेते। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट रिपीट करे और दूसरों को सुनाए, तब उच्च पद पावे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो घर से नाराज हो गया बच्चा और खर्च रिश्तेदार के मूर्ति के घर में बैठ गया। माँ बाप ने समझा बच्चा पता नहीं जाने कहाँ चला गया। तो यहाँ तो मेहनत करनी है, मौसी के घर में तो जाना सहज है। माया मौसी सबको अपनी गोद में बड़े आराम से बैठा लेती है, लेकिन राम बाप की गोद में ठहरता है ना, ये कठिन है। तो मेहनत करनी है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता बाप दादा का यार प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। नजर रखी जाती है इस प्योरिटी के ऊपर। भारत के बड़े बड़े राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी राजाइयां निछावर कर दी, तो भारत वो देश है। तो कन्या है तो प्योरिटी के भंडार वाली होती है, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बल पर ही वो बड़े बड़े सन्यासियों को भी माथा झुकाने के निमित्त बनते हैं। दुनिया में बड़े बड़े सन्यासी माथा झुकाते हैं आज भी, लेकिन ब्राह्मणों की संगम में भी दुनिया में भी अब नजारे देखे हैं कि छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्म गुरुओं को झुकाने के निमित्त बनने वाली है। इसलिए मुरली ने बोला कि कन्याएं बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारेंगे, और ये काम कराना है बहुत छोटी छोटी कन्याओं से। क्या तो कुमारियां तकदीर बना करके आई, उनको विशेष संरक्षण मिलता है बाप के पास, कुमारों को सरेंडर नहीं करते। मुरली ने क्या बोला? बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? बैल पाल गाया हुआ है या गऊ पाल गाया हुआ है? गऊ पाल। तो बाप कन्याओं की पालना करने के लिए बांधा हुआ है, कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि ये एक एक कुमारी सेवाधारी है। क्या मन कोई करुणा सेवा भी नहीं करती, माता सेवा भी नहीं कर सकती, लेकिन जो प्योरिटी की वाइब्रेशन है वो सेवा जरूर करेंगे। कौन सी कुमारियों के? जो कुमारियां बाप की बन चुकी है, एक एक कुमारी माना प्रत्येक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते हैं एक कुमारी इसी स्कूल तारने वाली है, और बाप कहते एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है, कैसे तीर्थ कुल को तारने वाली नहीं, विश्व का उद्धार करने वाली है, तो विश्व सेवा के कंस्ट्रक्टर बन गई, विश्व सेवा की ठेकेदार कौन बन गई कुमारियां, कितना अच्छा जॉब है क्या? तो लौकिक दुनिया का जॉब लेने के लिए कुमारियां कितनी पढ़ाई करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, और यहाँ पे ये जॉब कितना सस्ते में मिल रहा है, सारी विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी, बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं, और साथ साथ विश्व की आत्माएं भी दुआएं करेंगी, तो सर्व के दुआओं की अधिकारी बन गई। अच्छा ओम शांति। जो सांस में जड़ा हुआ हीरा है, रतन है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो सबसे श्रेष्ठ स्थान परमात्मा स्थान है, उससे श्रेष्ठ और कोई स्थान हो नहीं सकता, तो उसी स्मृति में रहो कि हम बाप के बन गए,